नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मूज जल डमरू मध्य खोलने की समय सीमा के बीच इसराइल के ईरान में पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमले के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष गहराया। तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सीमा चौकी पर कब्जा करने का दावा किया। चीन ने अपने हवाई क्षेत्र को 40 दिनों के लिए प्रतिबंधित करने की घोषणा की। नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश किया और उलान बटोर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रीति पवार, प्रिया और अरुंधति फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। इसराइल ने ईरान के असलुये स्थित साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमले की बात कही है। ईरान द्वारा संयंत्र पर हमले की घोषणा के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने यह बयान दिया। श्री कार्ड्स ने कहा कि इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर शक्तिशाली हमला किया है, जहां देश का लगभग 50% पेट्रोकेमिकल का उत्पादन होता है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मूज जल डमरू मध्य को नहीं खोला गया तो इस सप्ताह बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले हो सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल तब तक ईरान पर सभी मोर्चों पर पूरी ताकत से हमला जारी रखेगा जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता और युद्ध के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। श्री नेतन्याहू ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी और कुद्स फोर्स की यूनिट 840 के कमांडर असगर बाघेरी की हत्या को अपनी लड़ाई में एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने इसराइल के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इससे पहले इसराइल रक्षा बलों ने आरोप लगाया था कि खादेमी दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त सचिव सी शिखा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है।
गेहूं का हमारे पास लगभग 220 लाख मीट्रिक टन भंडार है और चावल का करीब 380 लाख मीट्रिक टन। दोनों मिलाकर कुल करीब 602 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद देश में खाने के तेल की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। प्रमुख देशों से आयात लगातार जारी है, इससे कुल आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करेगी।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि पिछले दो दिनों में भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी जहाज ग्रीन संघवी और ग्रीन आशा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से निकल चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
पिछले पांच हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इतवार वाले दिन भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को खोले हैं ताकि सभी को एक स्मूथ एलपीजी डिलीवरी हो पाए।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से बातचीत की।
हमारे विदेश मंत्री की कल कतर और यूएई दोनों देशों के विदेश मंत्री से बातचीत हुई, साथ ही साथ उनके पास ईरान के विदेश मंत्री का भी टेलीफोन आया। इन तीनों बातचीत में विदेश मंत्रियों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बातचीत हुई और वहां के हालात क्या है, इस पर उन्हें अपनी अपनी बातें रखी और समीक्षा किया।
तालिबान ने कहा है कि पड़ोसी देश के सैनिकों के साथ झड़प के बाद उसने पूर्वी अफगानिस्तान के पास एक पाकिस्तानी सीमा चौकी पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में तालिबान बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी की पुष्टि की। यह घटना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। CPNUML सांसद लीला कुमारी भंडारी नेपाल की राष्ट्रीय सभा की निर्विरोध उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। आज उच्च सदन की बैठक में भंडारी को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यूएमएल, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सहित प्रमुख दलों की इस पर आम सहमति थी। इससे पहले वे संविधान सभा की सदस्य और शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रह चुकी हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अपने हवाई क्षेत्र को 40 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। कल मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये चेतावनी 27 मार्च से 6 मई तक प्रभावी रहेगी। औपचारिक रूप से नोटिस टू एयर मिशन्स के नाम से जानी जाने वाली ये चेतावनियां आमतौर पर पायलट और विमानन अधिकारियों को हवाई क्षेत्र में अस्थायी खतरों या प्रतिबंधों के बारे में सूचित करने के लिए जारी की जाती हैं। चीन ने इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य अभ्यास की घोषणा नहीं की है। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर रूसी ड्रोन हमले में 2 महिलाओं और 1 नवजात शिशु की मौत हो गई। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के प्रमुख काला सागर तेल निर्यात केंद्र को निशाना बनाया। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि ओडेसा पर रात भर चले हमले में एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। एक रिपोर्ट।
रूस के हमलों ने यूक्रेन के बिजली ग्रिड को भी निशाना बनाया। इससे चेरनहिव, सोमी, खार्किव और निप्रो क्षेत्रों में ऊर्जा अवसंरचना प्रभावित हुई। पहले साक्षात्कार में जेलेंस्की ने चिंता व्यक्त की कि ईरान के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन के पास हथियारों का भंडार कम हो रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी हवाई सुरक्षा ने रात भर में यूक्रेन के 50 ड्रोन मार गिराए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
नासा का आर्टिमिस द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये वो क्षेत्र है जहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अधिक है। नासा ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें संपूर्ण ओरिएंटल बेसिन दिखाया गया है जिसे अक्सर चंद्रमा का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। नासा ने यह भी पुष्टि की कि चालक दल ने सफलतापूर्वक मैनुअल पायलटिंग प्रदर्शन पूरा कर लिया है और अपनी उड़ान योजना की समीक्षा की है। इसमें उन प्रमुख विशेषताओं की पहचान करना शामिल है जिनका वो अपनी कक्षा के दौरान अध्ययन और फोटो खींचने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान HRCP ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज द्वारा गठित विशेष पुलिस बल की फर्जी मुठभेड़ों में 1000 से अधिक लोगों की हत्या के मामले में तत्काल न्यायिक जांच की मांग की है। आयोग के एक अधिकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष में पंजाब के अपराध नियंत्रण विभाग CCD ने फर्जी मुठभेड़ों के जरिए 1000 से अधिक संदिग्धों को बिना किसी अपराध के मार दिया। नेपाल में ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं। नेपाल दूर संचार प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के समन्वय से अवैध रूप से संचालित सट्टेबाजी संबंधी ऐप्स और वेबसाइट की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया है। NTA को ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में पिछले सप्ताह टेलीफोन, ईमेल और संदेशों जैसे विभिन्न माध्यमों से 50 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। नेपाल की कैबिनेट बैठक में 27 मार्च को शासन सुधारों के अंतर्गत सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट को 24 घंटे में बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया था। उलान बटोर में प्रीति पवार, प्रिया और अरुंधति चौधरी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज प्रीति पवार ने एजी इम को, प्रिया ने नामोन मोनखोर को और अरुंधति ने ओयशा तोयरोवा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में 4 मुक्केबाज पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मोज जल डमरू मध्य खोलने की समय सीमा के बीच इसराइल के ईरान में पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमले के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष गहराया। तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सीमा चौकी पर कब्जा करने का दावा किया। चीन ने अपने हवाई क्षेत्र को 40 दिनों के लिए प्रतिबंधित करने की घोषणा की। नासा के आर्टिमिस द्वितीय मिशन ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश किया और उलान बटोर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रीति पवार, प्रिया और अरुंधति फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।